नमस्कार, गुड इवनिंग। शुभ संध्या घड़ी में रात के 8:30 हुए हैं और हम हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं धर्मेंद्र और आज के हमारे मेहमान हैं खेल विशेषज्ञ संजीव कुमार। संजीव, स्वागत आपका।
नमस्कार।
आज लक्ष्य सेन के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्वार्टर फाइनल मुकाबला ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में खेलने जा रहे हैं, जहां पर भारत की और सारी संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं। उनका मुकाबला कठिन है, लेकिन जिस तरह का फॉर्म है उनका, किस तरह से देख रहे हैं आप इस मुकाबले को?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि लक्ष्य से हमें भूलना नहीं होगा कि आखिरी बार उन्होंने यहीं वो फाइनल में पहुंचे थे और चूक गए थे। अब बहुत दिनों तक बाहर रहे चोट की वजह से, और उम्मीद करें कि वो जो कहीं न कहीं जो एक नैगिंग थोड़ा सा होता है, थोड़ी सी भी चोट का जो असर होता है वो ना हो
जी।
तो मुझे लग रहा है कि बहुत कठिन चुनौती आपने कहा, मुझे लग रहा है कि ये भी चुनौती पेश करेंगे
जी। हम आपके साथ बात करेंगे इस खबर पर और तमाम खेल खबरों पर भी करेंगे चर्चा। अब सुर्खियों पर डाल लेते हैं एक नजर। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में अपनी चुनौती रखेंगे। दिल्ली में महिला प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर मैच में इस समय रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला मुंबई इंडियंस के साथ जारी। आईसीसी ने सीमित ओवरों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में ओवरों के बीच स्टॉप क्लॉक का उपयोग अनिवार्य किया, और आई लीग फुटबॉल में राजस्थान एफसी ने ट्राउ को 2-0 से हराया। तो बात पहले बैडमिंटन की ही। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में अपनी चुनौती रखने जा रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता लक्ष्य का मुकाबला मलेशिया के ली जी जिया से होगा। इससे पहले कल उन्होंने डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन को 24-22, 11-21, 21-14 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु कल दक्षिण कोरिया की आन से यंग से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई। पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को इंडोनेशिया के डी मौलाना और एम एस सिकरी से हार का सामना करना पड़ा। महिला डबल्स में अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रेस्टो भी कल चीन की झेंग यू और झांग शिजियांग से हार गईं। तो हम बात कर रहे थे लक्ष्य सेन की, आप जैसा कह रहे थे कि चोट के कारण जो है उनको हाल के दिनों में परेशानी हुई है, लेकिन पिछला टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन भी उनका ठीक ठाक रहा था और अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया था। ओलंपिक ईयर है, हर टूर्नामेंट इस तरह के जो बड़े टूर्नामेंट है काफी मायने रखते हैं।
बिल्कुल, और जो ओलंपिक की बात आपने की है तो उसमें रैंकिंग्स का बहुत बड़ा असर है कि इतने तक जो रैंकिंग्स में अगर 16 में है तो आप क्वालिफाई करते हैं डायरेक्टली। तो अभी पीछे थे वो, 20 से भी बाहर थे, लेकिन जो टूर्नामेंट जीता है उन्होंने, यहाँ भी जहां तक पहुंचे हैं, मुझे लगता है कि जो अब रैंकिंग नेक्स्ट अब जब आएगी तो कहीं ना कहीं वो 10-11 पर होंगे। तो एक तरह से वो तो पक्का हो जाएगा कि आप ओलंपिक्स में अब डायरेक्ट जा रहे हैं। और इसके अलावा जो टूर्नामेंट की बात करें, वो बाहर रहे हैं ये मत भूलिए, उम्र उनके साथ है, कमाल के खिलाड़ी हैं, और उनके साथ कहें तो 24 घंटे उनके कोच उनके फादर ही हैं। हालांकि अब बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इनके साथ काम करते हैं, जो फिजियोर हैं, और 10 तरह की जो सुविधाएं होती हैं वो सब मिल रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो जो चोट थी वो बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं प्लेयर के वो चोट रहती है, और कि कहीं वो फिर से उभर ना आए। जो खेल मैंने पिछला देखा था और जो जिस तरह से उन्होंने उनसे ज्यादा अच्छे खिलाड़ी थे, मतलब रैंकिंग वाइज कहे, उनको उन्होंने हराया, तो ये कमाल का मैच खेला उन्होंने, और उसका कॉन्फिडेंस जरूर उनके पास होगा।
लेकिन यहीं पर ये बात आती है कि पीवी सिंधु, जिनका पिछला साल हम याद करते हैं कि बहुत ही अच्छा नहीं रहा था, इस साल भी अभी तक उनके लिए कुछ खास नहीं रहा है। वो काफी लंबे समय बाद कोर्ट पर उतरी और पिछले मैच में जो पिछला टूर्नामेंट था फ्रेंच ओपन, उसने क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया और यहां भी बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई हैं। जो ये पूरा सीजन रहा है और जिस तरह से ओलंपिक ईयर की हम बात कर रहे हैं, पीवी सिंधु को भी क्या लगता है कि पूरा जो अपना प्रयास है वो नहीं कर पा रही है, क्योंकि फिटनेस उनकी भी समस्या रही है?
बिल्कुल, देखिए, और दो बातें हैं। एक तो वो जो चोट थी उनकी, सर्जरी भी हुई उनकी और काफी दिन रिहैब में लगा उनको, और उसके बाद उस पर बहुत काम किया उन्होंने, अपडेट देती थी बीच बीच में, फिर वो बैंगलोर भी गई और वहां पर जो अपना प्रकाश पादुकोण एकेडमी में उनके साथ कहें विमल कुमार के साथ, तो उन्होंने बहुत प्रयास किया और जो फिटनेस लेवल था उन्होंने कुछ दिखाया मैचेज में, क्योंकि पिछला जो मैच था उनका जो आंसे यंग के पहले जो उनका मैच था वो बहुत टफ था और उन्होंने अच्छा फाइट देते हुए अच्छी जीत दर्ज की। लेकिन मुझे दो चीजें लगती है, एक तो लगता है कि फिटनेस पर हम डाउट नहीं कर सकते क्योंकि खेल रही है, अगर फिटनेस की वजह से वो मेडिकल ब्रेक लेना या इस तरह से वो दिखना नहीं है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। जैसे आज से यंग की बात करें तो लगातार सातवीं हार है उनके खिलाफ, तो कोई एक खिलाड़ी होता है ना, सिंधु थी कि साइना के बॉल को ढहा दिया, वर्ल्ड नंबर वन को हरा दिया, वो सब था, लेकिन उस चोट के बाद और इस तरह के खिलाड़ी से खेलना जिसे आप पीछे छह मैच हार चुके हो और उनसे ज्यादा वो फॉर्म में प्लेयर हैं जिन्होंने पीछे टूर्नामेंट भी दो टूर्नामेंट जीते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उससे ओवरकम नहीं कर पा रही है
जी। और अगर टेबल टेनिस की बात करें तो सिंगापुर स्मैश टेबल टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज अचंत शरद कमल की हार के साथ ही चुनौती समाप्त हो गई। अंतिम आठ में दुनिया के छठे नंबर के खिलाड़ी फ्रांस के फेलिक्स लेब्रून ने 1-4 हराया शरद कमल लेब्रून से 9-11, 2-11, 7-11, 11-9, 8-11 से पराजित हुए। 41 वर्ष के अनुभवी शरद कमल के खिलाफ शुरू से ही 17 वर्षीय लेब्रून ने खेल पर नियंत्रण बनाए रखा। कमाल का मुकाबला आप कह सकते हैं।
देखिए अभी उसका इसमें किसी आपने जो आखिरी लाइन कही कि 40 साल और 17 साल लेब्रून जो है भरते हुए खिलाड़ी है और बहुत ही उम्र का अंतर तो होता है 24 साल का अंतर, और मैं हैट्स ऑफ टू शरद कमल की इस उम्र में भी एक लड़के को उन्होंने फाइट दी जो उनसे काफी कम उम्र है, स्टेमिना का फर्क होता है, वो अनुभव के से खेलते हैं अपने, बट 17 साल का खिलाड़ी हो, बहुत अच्छा खिलाड़ी हो, उसके साथ खेलना और उसको चुनौती देना, उनको तो सलामी करेंगे हम शरद
जी। बिल्कुल, क्योंकि अगर भारतीय खिलाड़ियों की बात करें, टेनिस और टेबल टेनिस जैसे खेल जो कि बहुत फास्ट होते हैं, इनमें अगर आप देखें भले ही डबल्स में हो, लेकिन रोहन बोपन्ना, लिएंडर पेस इसके उदाहरण है कि 40 के बाद भी उन्होंने टूर्नामेंट जो है ग्रैंड स्लैम जीते हैं, और यहाँ पर आप देखिए अचंत शरद कमल जो है वो
41 क्लब मुझे लग रहा है कहना चाहिए, क्योंकि वो भी 41 के हैं और शरद कमल भी 41 के हैं, और उन्होंने तो कहा ही है कि भाई जैसे कहते ना कि उम्र जो है एक पड़ाव है वो उस तरह से नहीं लेते, और बहुत मैं देख रहा था जैसे आप लोगों पन्ना का नाम लिया, जब वो ऑस्ट्रेलियन ओपन में वो जीते तो जब इंटरव्यू उनका सानिया मिर्जा कर रही तो उन्होंने कहा कि उनसे कम उम्र की है सानिया, उन्होंने कहा कि हम दुनिया लेवल से जानते, एक साथ खेले हम, जीते हम, मैंने छोड़ दिया और आज मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ, तुम कब तक खेलोगे आप तो उन्होंने बहुत मजाक किया, लेकिन हाँ सीरियस तौर पे कहे तो ये उनके जज्बे को सलाम, क्योंकि इस उम्र में खेलना ही अपने आप बड़ी बात है, और उस लेवल तक पहुंचना, टूर्नामेंट जीतना, क्वार्टर फाइनल पहुंचना, सेमीफाइनल पहुंचना, ये यंगस्टर्स के लिए इंस्पिरेशन।
टेनिस की बात करें तो इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट में 15 मार्च स्पेन के कार्लोस अल्काराज के लिए खास रहा, उन्होंने क्वार्टर फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-3, 6-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। एक रिपोर्ट सुनते हैं।
मधुमक्खियों के झुंड के कोर्ट पर आ जाने से यह मैच लगभग 2 घंटे तक रुका रहा, लेकिन इससे अल्काराज की एकाग्रता नहीं टूटी और उन्होंने आसानी से जीत हासिल की। यह इंडियन वेल्स में उनकी लगातार 10वीं जीत है। अंतिम चार में उनका सामना जानिक सिनर से होगा। सिनर ने अन्य क्वार्टर फाइनल में जीरी लेहेका पर 6-3, 6-3 से जीत के साथ इस साल अपनी लगातार जीत के सिलसिले को 16 मैचों तक पहुंचा दिया। एक अन्य क्वार्टर फाइनल मैच में टॉमी पॉल ने कैस्पर रूड को 6-2, 1-6, 6-3 से पराजित किया और अपने करियर में दूसरी बार एटीपी मास्टर्स टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब उनका सामना डैनिल मेदवेदेव से होगा, जिन्होंने होल्गर रून को 7-5, 6-4 से हराया। महिला वर्ग में मारिया सकारी अमेरिका की ईमा नवारो को 5-7, 6-2, 6-4 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई। एक अन्य मैच में अमेरिका की कोको गफ ने चीन की यू युआन को 6-4, 6-3 से हराकर अंतिम चार में प्रवेश किया। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में पोलैंड की ईगा स्वियातेक ने कैरोलिना वोजिनियाकी के खिलाफ वॉकओवर हासिल किया। जब मैच में स्वियातेक 6-4, 1-0 से आगे थी तभी चोट के कारण वोजियाकी ने मैदान छोड़ने का फैसला किया। अमन यादव, स्पोर्ट्स कैन।
और बात क्रिकेट की, दिल्ली में महिला प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर मैच में इस समय रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला मुंबई इंडियंस के साथ चल रहा है। रॉयल चैलेंजर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 16 ओवर में 5 विकेट पर 90 रन बना लिए हैं। आज की विजेता टीम का मुकाबला रविवार को फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स से होगा। दोनों टीमें काफी अच्छी हैं। अगर हम बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में स्मृति मंधाना कप्तान है, दूसरी तरफ हरमनप्रीत कौर मुंबई इंडियंस की कप्तान है। लेकिन इन दो खिलाड़ियों के खासतौर पर प्रदर्शन अगर देखें तो इस टूर्नामेंट में उतना अच्छा रहा नहीं, और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हाल के दिनों में जो इनकी प्रतिष्ठा है उसके अनुरूप प्रदर्शन किया नहीं है।
एक मैच स्मृति ने अच्छा खेला था, रन भी बनाए थे हरमनप्रीत ने भी, लेकिन कंसिस्टेंसी जिसको कहते हैं निरंतर अच्छा प्रदर्शन करना, वो नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह मुझे लग रहा है इंडियन टीम के साथ भी खेलते हुए हरमनप्रीत कौर जो है व्यक्तिगत तौर पर कई मैचेस में हमने देखा है कि वो बहुत मैच के बाद एक पारी उन्होंने बहुत अच्छी खेली थी। स्मृति के साथ पिछले सीजन में ये कहा गया कि उन्हें कप्तानी मिली, नया उनके लिए अनुभव था ये, और शायद उसके प्रेशर में आ गई। और आरसीबी टीम में है, वहां भी एक हमारे सुपरस्टार खिलाड़ी पुरुषों की टीम में है, बहुत अच्छी टीम बनती है लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं कर पाती है। महिलाओं के साथ इनकी टीम अच्छा कर रही है लेकिन व्यक्तिगत तौर पर स्मृति मंधाना ने एक पारी को छोड़ दे तो अच्छा नहीं किया। इस बार उम्मीद की जा रही थी कि पिछले बार जो कप्तान के तौर पे बहुत कम उनका स्ट्राइक रेट भी था, औसत भी था, बहुत अच्छा नहीं किया था, तो होपफुली इस बार अच्छा करेंगी। लेकिन इस बार भी उन्होंने निराश किया, लेकिन शायद यही होगा कि उनकी टीम जो है आगे बढ़े तो सबको अच्छा लगेगा।
और उधर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने सीमित ओवरों के अंतर्राष्ट्रीय मैचों में ओवरों के बीच स्टॉप क्लॉक का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। ये नियम 1 जून 2024 से लागू होगा। सुनते हैं रिपोर्ट।
इस साल के वेस्ट इंडीज और यूएसए में होने वाले आईसीसी 2020 विश्व कप में इस नियम का इस्तेमाल किया जाएगा। आईसीसी ने बोर्ड के बाद बैठक में बताया कि स्टॉप क्लॉक इस साल जून से सभी वनडे और 2020 मैच में स्थायी हो जाएगी। दिसंबर 2023 में आईसीसी ने पुरुषों के सीमित ओवरों के अंतर्राष्ट्रीय मैचों में परीक्षण के आधार पर स्टॉप क्लॉक की शुरुआत की थी। परीक्षण अप्रैल 2024 तक चलना था लेकिन मैचों के समय पर पूरा होने के संदर्भ में प्रयोग के परिणाम पहले ही मिल चुके हैं। आईसीसी ने बताया कि मुख्य कार्यकारी समिति CEC को प्रस्तुत किए गए नतीजों से पता चला कि प्रति वनडे मैच में लगभग 20 मिनट बचाए गए थे। इस नियम के मुताबिक फील्डिंग टीम को एक ओवर खत्म होने के बाद अगला ओवर 60 सेकंड यानी एक मिनट के अंदर शुरू करना होता है। ओवर खत्म होते ही स्टॉप वॉच ऑन हो जाएगी और फिर 60 सेकंड के अंदर टीम को अगला ओवर शुरू करना होगा। अगर फील्डिंग टीम इस नियम का पालन नहीं कर पाती है तो उस पर पेनल्टी का भी नियम है। इस गलती के कारण फील्डिंग टीमों को 5 रन का जुर्माना लग सकता है। हालांकि इससे पहले उन्हें 2 बार चेतावनी मिलेगी। सभी आईसीसी सफेद बॉल फॉर्मेट के लिए नियम को लागू किया जाएगा। स्पोर्ट्स कैन से अभिषेक कपिल।
ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने संन्यास का ऐलान किया। मैथ्यू वेड ने शेफील्ड शील्ड फाइनल के बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। फुटबॉल की बात। बंगाल के कल्याणी स्टेडियम में आज खेले गए आई लीग फुटबॉल मैच में राजस्थान एफसी ने ट्राऊ को 2-0 से हरा दिया। मैच का पहला गोल रिचर्डसन केनके ने 30 मिनट में किया। हाफ टाइम तक राजस्थान की टीम 1-0 से आगे थी। मैच का दूसरा और अंतिम गोल विलियम पॉलिनिया खुंग ने 66 मिनट में किया। इस जीत के बाद भी राजस्थान की अंक तालिका में स्थिति बहुत नहीं सुधरी है। वो 20 मैच में 25 अंक के साथ 7वें स्थान पर मौजूद है। चलते चलते एक और खबर। पुणे में सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में आज हरियाणा ने असम को 15-0 से हरा दिया। हरियाणा की जीत में दीपिका की अहम भूमिका रही। उन्होंने हैट्रिक समेत 5 गोल किए। इस जीत से हरियाणा 3 अंक लेकर पूल में शीर्ष पर है। उधर पूल ई में ओडिशा हॉकी संघ ने गोवा हॉकी को 9-1 से मात दी। पूल ई में ओडिशा हॉकी संघ की टीम शीर्ष पर है जबकि तीसरी टीम हॉकी चंडीगढ़ है। पूल एफ में हॉकी पंजाब ने हॉकी राजस्थान को 11-2 से हराया। और अखबारी की चीजें कह रही हैं कि आज के हमारे स्पोर्ट्स कैंप कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। संजीव स्टूडियो में आने के लिए हमसे बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया।
नमस्कार
दोस्तों, आपसे कल फिर मुलाकात होगी ढेर सारी नई खेल खबरों के साथ। मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।